ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। असंग निशिता ज्ञान अनला विधुता अशेष मलानम भव स्वभावानम आत्मा आरामानम मुनिनम अनवरत परिगुणिता गुणागणा परममंगला आयना गुणगणकथना असी। ये गद्य के रूप में है तो मैं इसको स्वयं पढ़ूंगा। असंग निशीत ज्ञानानल विधुता शेषमलानम भवत्स्वभावानम आत्मा रामानम मुनीनाम मनवरत परिगुणित गुण गण परम मंगलायन गुण गण कथनो असि। असंग वैराग्य से, निशिता दृढ़ किया है, दृढ़ किया है, ज्ञान ज्ञान की, अनल अग्नि से, विधुता हटाए गया, अशेष असीम, मलानम जिनकी मलिन वस्तुएं, जिनकी मलिन वस्तुएं, भवत स्वभावानम जिन्होंने आपकी गुण प्राप्त कर लिया है, आत्मा आरामानम जो आत्मतुष्ट है, आत्मराम है, मुनीनम मुनियों का, अनवरत लगातार, परिगुणिता स्मरण करते हैं, गुणगण जिसके सद्गुण समूह, परम मंगल परम आनंद, आयन उत्पन्न करता है, गुणगण कथन जिसके लक्षणों का जप, असी तुम हो, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे ईश्वर, समस्त विचारवान मुनि तथा साधु पुरुष निरंतर आपकी गुणों का गान करते रहते हैं। इन मुनियों ने अपनी ज्ञान अग्नि से अपार मलराशि को पहले से ही दग्ध कर दिया है और इस संसार से अपने वैराग्य को सुदृढ़ किया है। इस प्रकार वे आपकी गुणों का ग्रहण कर आत्मतुष्ट हैं। तो भी जिन्हें आपकी गुणों के गान में परम आनंद आता है, उनके लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। तात्पर्य, महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में समवेत पुरोहित ने भगवान विष्णु के द्वारा साक्षात दर्शन दिए जाने की भूरी भूरी प्रशंसा की और अपने को परम धन्य माना। ईश्वर का दर्शन उन महान संतों के लिए भी है जिन्होंने भौतिक संसार से वैराग्य ले लिया है और जिनके हृदय ईश्वर की महिमा का निरंतर जप करने के कारण विमल और दुर्लभ है। ऐसे पुरुष ईश्वर के दिव्य गुणों का जप करके संतुष्ट रहते हैं। उन्हें ईश्वर के प्राकट्य की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषिगण यह इंगित करना चाहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार महान साधियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु वे उन पर इतने प्रसन्न हुए कि साक्षात प्रकट हो गए, इसलिए समस्त जाचक अत्यधिक कृतकृत्य हुए। ओम अज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानांजन सलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीजुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्वं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पहले इस भागवतम के शब्द को दोहराने के जो शक्ति है, तो हम वैष्णव से याचना करते हैं प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि हम इस भागवतम के शब्दों को ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो यही आशा है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तो इसलिए नित्यम भागवतम सेवया, क्योंकि जो भागवत है एक ग्रंथ भागवतम और व्यक्ति भागवतम। तो भागवतम में भगवान के अवतारों के साथ अनेक भक्तों के चरित्र हैं जिन्होंने भगवान को साक्षात दर्शन प्राप्त किए। भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त्या तो अनन्या सक्यम अहमेव विधो अर्जुन। ये भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे हम भगवान को साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ज्ञान्तुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, भगवान की महिमा व भगवान के स्वरूप कैसे हैं इसको पहले जानना चाहिए, ज्ञान्तुं, और इसके बाद द्रष्टुं। तो यहां पर हम प्रियव्रत महाराज की वंश को हम चर्चा कर रहे हैं। उन वंश में कितनी महान महान भागवत भक्त हुए हैं। पहला हुए हैं प्रियव्रत महाराज के बाद अग्निध्र, और अग्निध्र की सबसे बड़ा पुत्र हुए कौन, नाभि। फिर नाभि से प्रकट होंगे कौन, साक्षात भगवान ऋषभदेव। और ऋषभदेव के बाद उनके महान पुत्र कौन होंगे, भरत महाराज। तो इतनी सुंदर इतनी पवित्र वंशानुचरित हैं जिसको सुनने से भक्त के हृदय में भक्ति में दृढ़ता आती है, भक्तिरि भवति नैष्ठिक। तो अभी नाभि महाराज एक अच्छे पुत्र व संतान प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए। तो ऋतिजा ने जब भक्ति भाव से भगवान की आराधना किए, ये यज्ञ से साक्षात विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और अभी जो हम सुन रहे हैं प्रसंग, ये क्या है, उन ऋतिजों के द्वारा स्तुति है। इसमें भगवान की गुण और भगवान के नाम की महिमा है। इस श्लोक में विशेष करके ऋतिजों ने भगवान की नाम की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। असंग निशीत ज्ञान अनल विधुता शेष मलानम, जो व्यक्ति असंग रहता है, प्रकृति की गुण की संग नहीं करता है, और ज्ञान की अनल, ज्ञान रूपी अग्नि से जो इस मल को नष्ट कर देता है, तो उनको क्या होता है, स्वभावानम आत्मा रामानम, उनकी स्वभाव कैसे हो जाता है, आत्मा राम, सेल्फ सेटिस्फाइड। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ये हृदय में जो कंटामिनेशन है वो क्या है, यह है कर्म, कर्म वासना। भगवान कहते हैं कि इस कल्मश को नष्ट करने के लिए ज्ञान के आश्रय लेना चाहिए। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते, ज्ञान के समान और कोई पवित्र नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन कहते, तस्मात् अज्ञान संभूतं हृष्ट ज्ञान सिनात्मन चित्वेन संशयम् उतिष्ठ आतिष्ठ भारत। तुम ज्ञान की तलवार से इस अज्ञानता को नष्ट करके आप मेरी भक्ति में तत्पर हो जाओ। लेकिन इस ज्ञान भक्ति के साथ, ऐसे नहीं कि निर्विशेष ज्ञान, जगत मिथ्या। ज्ञान जब तक भगवान के प्रेम उत्पन्न नहीं करता है वा भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए भाव उत्पन्न नहीं करता है, वो ज्ञान अधूरा है। नेह जत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो हिस। व्यक्ति कर्म से कैसे ज्ञान तक आता है, और ज्ञान की परिसमाप्ति होती है सेवा में। ज्ञाने परिसमाप्यति। तो नाभि महाराज की जो रुतिस्थ हैं, इन्होंने भगवान के विषय में अशिष्ट रूप से उनकी जानकारी था। इसलिए जब वह उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, वो कह रहे कि उनकी स्वभाव, जो लोग बड़े तपस्या करते हैं, ज्ञान की पथ को अनुसरण करते हैं, वो तो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो मुनि जो आत्मतुष्ट हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, तो वो अपने परिगुणित गुणागण परम मंगल गुणागण कथनम असी। जिनकी हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, तो अनवरत, एक शब्द आया है अनवरत, वो मुनि हमेशा ही आपकी गुणों को जो परम मंगलमय है उनको निरंतर गान करते हैं। गुण कथनम, और वही उपाय है कि भगवान के साथ जीव की एक दृढ़ संबंध स्थापन करना। भगवान कहें कि ज्ञान और तपस्या के द्वारा कोई पवित्र हो जाता है, बहव ज्ञान तपसा पूत, मदभाव आगता, द नेक्स्ट स्टेप, कैसे नित्य निरंतर भक्ति में युक्त होता है, भगवान को प्रेम करने की कला सीखता है। कपिल देव को अपनी माता देवहूतिनी स्तुति करती है,
जन्नामधेया श्रवणानुकीर्तना जत प्रौवणा जत सद्योपि सद्यः कुतः पुनश्च भगवान दर्शनात्। मैं भूल रहा हूं दो लाइन, जन्नामधेय श्रवणानु कीर्तनात् जत प्रौवणात्। कहते उनकी विषय में क्या कहना है, जो आपको दर्शन करते हैं, कुतः पुनः, तो जिन्होंने आपको दर्शन करते हैं तो उन्होंने क्या किए हैं, तो आपकी नाम गुण और रूप को उन्होंने अच्छी तरह से अनुभव किए हैं, जन्नाम ध्येय श्रवणान कीर्तन, और उसको अच्छी तरह से उन्होंने कीर्तन किए। ये भगवान के नाम गुण और लीला को चर्चा करने से क्या होता है, सद्योपि साध्यो सविनाय कल्पते। साध्यो मतलब, सो मतलब कुत्ता, कुत्ता को खाने वाले चंडाल भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। फिर इतने में माता संतुष्ट नहीं हुई, अपने पुत्र की गुणगान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ओहोबत सुपाच गरियान जज्जीव हाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम स्तेपुस तपुस चुहुबो सस्नु आर्च्यम ब्रह्मान चरणानि गृणन्ति एते। कहते और उससे भी आश्चर्य ये है, सोपाच गरियान, एक कुत्ते खाने वाले वो भी महान हो जाते कैसे ना, ये जो सवनाय शब्द कहे हैं कि उन्होंने सभी तरह से पवित्र हो जाते हैं। सद्योपि साध्यो, तुरंत, ऐसे नहीं है कि ये तपस्या की फल 10 साल 25 साल के बाद मिलेगा, तुरंत, इमीडिएटली। और इसलिए भगवान अपने नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए कभी कभी ऐसे क्या करते हैं, स्वयं लीला करते हैं, जैसे अजाम्बेल, उन्हें नाम उच्चारण करने मात्र से ही भगवान की चार दूत प्रकट हुए, चार अक्षर सिर्फ उच्चारण किए, नारायण, और भगवान उस एक एक नाम की विशेषता को प्रकट करने के लिए चार दूत भी भेजे। इसलिए पहले नाम की महिमा, नारायण शब्द में जो ना शब्द है ये है नाम। तो इसी प्रकार उरुति जी ने कह रहे हैं कि जो भगवान के जो नाम है वो व्यक्ति को बहुत जल्दी ही पवित्र करता है, परंतु नाम के प्रति, नाम की महिमा के प्रति हम इतनी श्रवण करने पर भी हमारे अटैचमेंट नहीं होता है। तो भगवान ऐसे जो पतित हैं, सब प्रकार की भगवान की महिमा को जानने के बाद भी उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है, तो उनके लिए भी और कुछ विशेष चांस देते हैं। वो क्या है? जैसे महाराज दो दिन पहले बताए थे कि वो तो विद्वान था, परंतु उनके एक टेस्ट था कि वैष्णव की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। परंतु भगवान अनकंडीशनल मर्सी, जब अहित कोई कृपा बरसाना चाहते हैं तो साक्षात भी सुधारते हैं, क्योंकि जीव के प्रति भगवान का एक स्पेशल अटैचमेंट है। वो ही डिमांड कर सकते हैं कि मैं सबके पिता हूं, ये मेरे संतान है, पितामहस्य जगत। तो इसलिए उन्होंने साक्षात उस नाम को तो लेके आए चैतन्य महाप्रभु, और साथ साथ उन्होंने इस लीला प्रकट किए कि जगाई माधव का कलमश को दूर करने के लिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेजे, जो उनके साक्षात स्वरूप है। जब नित्यानंद प्रभु पहले जगाई माधव से याचना किए, आग्रह किए, क्योंकि प्रभु ने इसी कारण से अवतीर्ण हुए हैं, और आप कृपा करके इस नाम को उच्चारण करो, चैतन्य महाप्रभु आदेश दे नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, आमार आज्ञाए सर्वत्र करह प्रकाश, जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु हैया तार ये ही देश। तो जब सारे ब्राह्मण लोग मना किए, अरे दृष्ट है उनको मत बताओ, यदि आप जीना चाहते हो तो इस स्थान छोड़कर ही तुरंत चल जाओ, परंतु नित्यानंद प्रभु का जो भगवान के नाम देने की उत्कंठा व जो डिटर्मिनेशन है, वही कृष्ण भावना आंदोलन को आज बढ़ा रहे हैं। तो पहले बार जगाई माधव ने उनको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, नमाचार्य आप देखो नित्यानंद, आप उन ब्राह्मणों की बात नहीं सुने, मैं भी आपको मना किया। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आपकी प्रभु तो ऐसे नहीं कहे थे कि जो शराबी हैं, जो दृष्ट हैं, उनके पास नहीं जाना, मैं तो आपकी प्रभु की आज्ञा को पालन किया। हरिदास ठाकुर कहते थे, ये तो बहुत चपल है, ये बहुत चंचल है। तो नित्यानंद प्रभु कहते, नहीं मैं चंचल नहीं हूं, चंचल है आपकी प्रभु, क्योंकि भगवान के अंदर ये चंचलता है कि जल्दी से जल्दी जीवों को कैसे अपने ओर आकर्षित करें। तो नित्यानंद प्रभु जब ये सूचना दिए चैतन्य महाप्रभु को, जिस समय उन्होंने सभी पार्षदों को बता रहे थे अपने महिमा, मानो जैसे सनक आदि ऋषियों को भगवान संकर्षण अपने महिमा सुनाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ये नाम मैं स्वयं श्री कृष्ण, इस जो मैं नामी हूं उस नाम को धारण करके आया हूं, क्योंकि अन्य अवतार इस नाम की जो रस है उसको नहीं दे सकते, क्योंकि जिस रस को न पाने के कारण जीव अनेक दिन से ये संसार में संघर्ष कर रहा है। तो अवतीर्ण कलो अनर्पितम, ये जो नाम की जो प्रेम है तो ये अन्य अवतार नहीं दिए थे और ये भी अन्य अवतार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ही रसराज के रूप में इस नाम के रस को आस्वादन करते हैं। इसलिए जो अनुभव किया है, जो आस्वादन किया है, वो ही दूसरे को डिलीवर कर सकता है। इसलिए रियलाइजेशन, अनुभव आवश्यक है। मुनि ऋषि लोग तपस्या के बल से पवित्र हो जाते हैं, परंतु काम, क्रोध और लोभ आदि वो जो लहर से, वो भी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए मुनियों के लिए सिर्फ तपस्या आवश्यक नहीं है, वह मौन धारण करना और योग में समाधिस्थ हो जाना। इसलिए भगवान जब योग, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ सबकी फल जब मिलता है, भगवान कहते हैं वो है मेरी भक्ति। मद गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमामता। भगवान कहते तस्मा जोगी भवार्जुना, जोगी तो होना है, लेकिन ये जोगी की विशेषता क्या है? ना भगवान के साथ अपने प्रेम में संबंध को स्थापन करना। इसलिए भक्त लोग जो आनंद को अनुभव करते हैं वो है बलराम बा नित्यानंद प्रभु की कृपा से, क्योंकि काम जगत में सभी व्यक्ति काम के द्वारा वशीभूत हैं, परंतु जब भगवान कहते हैं कि बड़ा बड़ा बताम चाहम काम राग विवर्जितम, जो बलवान के बल होता है, अर्थात काम ही इस संसार में सबसे बलवान पुरुष है, परंतु बलराम व नित्यानंद प्रभु की कृपा होने से कोई इस काम राग उस विवर्जितम उसको त्याग कर सकता है, उसके पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से जैसे इस पतित आत्माओं को जगाई माधाई जैसे पतित आत्मा को मिला, तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद तो उन्होंने भी पाश्चात्य जगत में गए। केवल पाश्चात्य जगत में पतित नहीं है, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उनको बड़े बड़े भक्तों ने स्तुति किए कि पति तपा बना है तो तब अवतार, तो ये नहीं कहे थे कि पतित केवल पाश्चात्य जगत में है, क्योंकि ये संसार में सभी पतित हैं और प्रत्येक की भावना भी पतित है, ये संसार को भोग करने के लिए, संसार के ऊपर आधिपत्य जातन करने के लिए। लेकिन भगवान के गुण कीर्तन इस सब प्रकार की जो भावना से हमको मुक्त कर देता है, ये क्या है? ना कर्म वासना और भोग वासना कि मैं कर रहा हूं। इसलिए भक्त लोगों को तुष्टि करने के लिए भगवान ये उपाय हैं। मत चित्त, पहला अपने कॉन्शियसनेस डेवलप करना चाहिए कि भगवान के विषय में कैसे अपने मन को उसमें एस्टैब्लिश करें। फिर जब चित्त भगवान के ऊपर आकर्षित होता है, फिर प्राण भी जाता है उनकी सेवा करने के लिए, उत्कंठा जागृत होता है। फिर तीसरा क्या स्टेप कहते हैं? बोधयंतम परस्परम, आपस में और ही चर्चा करते हैं। भगवान के बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं जैसे बृहत भागवतामृत हैं, तो इसको खोलेंगे कि कैसे एक से एक बढ़कर भक्त हैं, वो गोप कुमार ने टेस्ट करके जाता है। बोधयंतम परस्परम कथयंतस्य मा नित्यम,
जो निरंतर उस कथा को गान करते हैं, और वो जो सर्टिफिकेशन है तुष्यन्ति च रमन्ति च। सर्टिफिकेशन सिर्फ आत्मा में है, मन सर्टिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि समुद्र मापम प्रविशन्ति जद्वत्। समुद्र जैसे अशांत रहता है तो मन की उर्मियां हैं इंद्रियों की डिमांड्स। लेकिन आत्मा तभी सेटिस्फाइड होता है जब इस उर्मियां बंद हो जाता है। समुद्र कभी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी कनेक्शन किसके साथ है? चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा जब पूर्ण हो जाती है पूर्णिमा के दिन, तो उसी दिन समुद्र में क्या होता है? और ज्वार आता है, अधिक ज्वार होता है। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते हैं उस दिन भी ज्वार होता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। एक प्रकार योगी लोग मन की कामना वासना को समाप्त करके एक ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्त है वो किस प्रकार आनंद को प्राप्त करता है? आनंदम अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। जब चैतन्य चंद्र की ऐसे रूप को दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में ऐसे समुद्र की तरह जो आनंद, जो लहर है, वो और आगे बढ़ता है। इसलिए भक्त इस भगवान की कथा में इतनी अटैच्ड हो जाते हैं, मानो इस कथा से बाहर जाने के लिए उनको चाह भी नहीं होता है। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए लिखते हैं कि कमल चरण को मन भ्रमरत उड़ी जा रही, जैसे कमल के अंदर भौंरा प्रवेश कर जाता है, लेकिन उस मधु को चखने में वो इतनी लग्न हो जाता है, तो फिर इस कमल के बाहर आने के लिए उनका मन नहीं होता है, और उस कमल का अंदर भी प्राण त्याग करता है। भौंरा के पास इतनी शक्ति है वो लकड़ी को भी काट सकता है, परंतु कमल की जो कोमल पत्तियां हैं उस भ्रमर उसको काट नहीं पाता है। ये प्रेम की बंधन है। तो उसी प्रकार भगवान के कोमल चरणों को जब भक्त आश्रय कर लेता है और उसी प्रकार के मधुकरी की तरह उस आनंद को आस्वादन करता है प्रति मुहूर्त, उसको त्याग करके फिर भौतिक जगत में जाने की चाह नहीं करता है। इसलिए भगवान की कथा क्या है? परम मंगला अयनम। अयन का मतलब भी है क्या है? घर। जैसे ठंडी घर जो फ्रिज लगता है तो ठीक है, गर्मी में हमको आनंद मिलता है कि इस ऐसी कमरे में रहने के लिए इच्छा होता है। तो जब संसार अनल होते, कि वास्तविक भौतिक संसार क्या है? अनल की तरह है, जल रहा है। तो भक्त जब आश्रय लेता है तो भगवान क्या करते हैं? ये भक्तिमय ऐसी सेट करते हैं उनके लिए, बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऋषिगण यह इंगित करना चाहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार महान साधुओं के लिए भी दुर्लभ है, किंतु वे उन पर इतनी प्रसन्न हुए कि वह साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान यदि किसके सामने प्रकट होना चाहते हैं तो ये समझना चाहिए कि पहले उनकी पर भगवान पहले प्रसन्न होते हैं। ऐसे हम जितने बड़े बड़े भक्तों का हम देखें कि दर्शन प्राप्त किए, तो पहले भगवान क्या कहते हैं? अनुग्रह। अनु का मतलब है पीछे, अग्रह मतलब है पकड़ लेना।
तो अगर कोई भक्त किसी एक उत्तम भक्त के पद को अनुसरण करता है तो भगवान फिर उनके पर अनुग्रह करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज 5 साल के लड़का है, थोड़े से उनकी मां की कटु वचन में इतनी दृढ़ संकल्प हो गए, नहीं मुझे जंगल जाकर के भगवान को प्रसन्न करना है और मुझे बड़े सिंहासन मिलना है। परंतु जब नारद मुनि की पद को अनुसरण किए तुरंत भगवान प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। और फिर ध्रुव महाराज कुछ चाह नहीं किए, स्वामी कृतार्थं वरं न जाच, आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान कहीं मांगो, तुम इतनी तपस्या किए 6 महीना तक जल सूखा पत्ता और यहां तक हवा पी करके उन्होंने तपस्या की, परंतु भगवान ये नहीं देखे कि आप कितने बड़े बड़े तपस्या कर रहे हैं। भगवान देखे क्या मेरी भक्त की पथ को अनुसरण कर रहा है, इज फॉलोइंग माई प्योर डिवोटीज फॉर डे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि यदि बड़े बड़े ऋषियों के लिए दुर्लभ है, ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नवजो वनांच वेदेशु दुर्लभ। वेद अध्ययन करके भगवान को दर्शन प्राप्त करना ये बहुत दुर्लभ है, परंतु कहते अदुर्लभ आत्मा भक्तो, परंतु मैं उनके लिए बहुत आसानी से उनके लिए सुलभ हो जाता हूं आत्म भक्तों, क्योंकि उनकी चेतना पूरी तरह से मुझ में लगा हुआ है। मत चित्ता मत गत्ता प्राण, तो कथा ही वास्तविक चित्त को भगवान के साथ जोड़ता है। यदि इस कथा से हम बाहर जाते हैं तो फिर त्रिगुणमय माया हमको बांध देती है रस्सी में। तो यदि भक्तों को यही प्रार्थना करना है कि यदि भगवान की इस भक्ति रस को हम आस्वादन करना चाहते हैं तो भक्तों के चरण कमल में हम रहना चाहिए। वो क्या है, तादेर चरण से भी भक्त सेन भास, जनमे जनमे हये यही अभिलाष। वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार चाह करते हैं। भगवान हमको इंडिपेंडेंट दिए तो नाभि महाराज जैसे अग्निद्र को फॉलो किए, और फिर अभी आप देखेंगे ऋषभदेव जो स्वयं भगवान प्रकट होंगे तो उन्होंने भी उपदेश दिए 100 पुत्र को, और भरत महाराज को उन्होंने उनके रिप्रेजेंटेटिव बनाए और फिर उनको गाइडेंस दी। तो भरत महाराज भगवान के इतनी बड़े भक्त हुए, जब आज पूरी देश भले ही उनको भूल गए हैं लेकिन उनका नाम को नहीं भूले भारत, और उस भारत वर्ष में स्वयं श्री कृष्ण आकर के ऐसे एक युद्ध की रचना की जो महाभारत हो गया। अब सोचो यही डिसेंडेंट है महाभारत, इसको महान बना दी। तो इनकी ये जो महान बनाने का पीछे यही रहस्य है कि भगवान की भक्ति, इसलिए हम इस गुण को प्रयास करना चाहिए। प्रथम प्रजल को छोड़कर सब भगवान की कथा में हम रुचि उत्पन्न करें तो भगवान एक दिन प्रभुपाद की कृपा से हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरी महाराज, यू हैव सम कमेंट?
भक्ति धर्म महाराज एनी कमेंट महाराज भक्ति धर्म महाराज
वेरी नाइस
थैंक यू महाराज किसके कोई प्रश्न है
हरे कृष्ण प्रभु जी ज्ञान और विज्ञान दोनों को अच्छी तरह से समझा दीजिए ज्ञान किसको कहेंगे विज्ञान किसको
प्रभुपाद बोलते हैं थियोरेटिकल नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज विज्ञान को अनुभव ज्ञान कहते हैं और ज्ञान को जो शास्त्र में जो दिया हुआ है इसको ज्ञान कहते हैं जब हम शास्त्र के ज्ञान को जीवन में पालन करते हैं तो वो विज्ञान व अनुभव में परिणत होता है इसको कहते हैं एक्सपीरियंस्ड नॉलेज
जो भौतिक जगत में जिसको ज्ञान बोल रहे हैं तो प्रकृत ज्ञान नहीं है भौतिक जगत में वो ज्ञान और अज्ञान वास्तव में किसको हम कह सकते हैं
नहीं इसको जो खास करके हम साइंस पढ़ रहे विज्ञान वो वास्तविक विज्ञान नहीं है वो ही मेटेरियल नॉलेज हम कह सकते हैं भौतिक ज्ञान कह सकते हैं वो ज्ञान की परिभाषा भी नहीं है ज्ञान इसको कहते हैं जो अंधकार को दूर करे वो है ज्ञान भौतिक ज्ञान को भी ज्ञान के अंतर्भुक्त नहीं कर सकते न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते और वेद में एक ऋचा है इस पवित्रता के ऊपर जो ज्ञान है सबसे पवित्र है तो ये ज्ञान तो पवित्र नहीं बनाता है जड़ विद्या सब मायारा वैभव जीव को करिया गाथा अच्छी तरह से एक गधा बनाता है तो भौतिक संसार के ज्ञान को भी ज्ञान नहीं कह सकते हैं अविद्या कह सकते इग्नोरेंस हाँ तो ज्ञान है शास्त्र की ज्ञान तो कभी कभी योग साधना के ज्ञान को भी विज्ञान कहा जाता है जब मैं महाराज से पूछा था एक प्रश्न कि कैसे काम विज्ञान को नष्ट करता है तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि वो विज्ञान नहीं भक्तिमय अनुभव का नहीं ज्ञान विज्ञान न आसनम तस्मास्तु इंद्रियाणि अन्य नियम्य भरत वर्षव पापनं प्रजयी हे न ज्ञान विज्ञान न आसनम तो काम जो है ज्ञान को नष्ट करता है क्योंकि उसमें अनुभूति नहीं हुआ है तो विज्ञान को कैसे नष्ट कर सकता है कहते यहां पर विज्ञान चक्रवर्ती पाद कहते हैं विशेष योग निनिध्यासेन बलेन अनुभूत ज्ञान इति विज्ञान जो हम योग प्राणायाम आदि से हम इंद्रियों को कंट्रोल करके एक सत्व अवस्था को प्राप्त करते हैं वो भी एक विज्ञानमय अवस्था है तो उस अवस्था से भी योगी गिर सकता है जैसा दुर्वासा सभरी इन्होंने बहुत तपस्या की उनको भी अनुभूति प्राप्त हुआ लेकिन अपराध से न बचने के कारण उस पद से गिर गए इसलिए जो विज्ञान होता है जो भक्तिमय विज्ञान होता है वो विनयता प्रदान करता है विद्या विनय संपन्न वो जब विनय को प्राप्त करता है तो व्यक्ति किसी स्थिति से गिर नहीं सकता है उस समय अपने स्थिति को अच्छी तरह से समझ जाता है
लेकिन अभी क्या है, हम भौतिक गुण से प्रभावित होकर हम दूसरे स्वरूप में अपने को समझते हैं, पप्ड अप विथ ही मेटेरियल्स मोड्स ऑफ नेचर। ये गुण ही हमको अहंकार से वशीभूत करता है, लेकिन विज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति तृणादपि सुनिचयन को मेंटेन करता है। और किसके कृष्ण मुरारी,
हरे कृष्ण प्रभु। ये हम कैसा विश्लेषण कर सकते हैं, डिवाइडेशन कैसा कर सकते हैं, कोई योगी है, कोई संत है, कोई भक्त है, पहचान कैसे कर सकते हैं?
जैसे सोना को पहचान करने के लिए क्या आवश्यक है, एक सोनारी बनना पड़ेगा। तो उसी प्रकार एक भक्तों को पहचान करने के लिए हम पहले भक्त बनना चाहिए, तब फिर हम पहचान कर सकते हैं। नहीं तो जो भक्त बने हैं, हाँ, जिनकी अनुभूति है, तो उनसे हम जिज्ञासा कर सकते हैं कौन कर, तो इसी प्रकार पहचान कर सकते हैं। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में और भक्ति रसामृत सिंध में लिखे कि एटलीस्ट भक्तों को पहचान करने के लिए मध्यम अधिकारी बनना चाहिए, और मध्यम अधिकारी का लक्षण दिए हैं, भगवान के साथ प्रेम, भक्तों के साथ मैत्री, और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको रिजेक्ट करता है, मध्यम अधिकारी। ये अवस्था आने पर कम से कम हम पहचान कर सकें। लेकिन जो निंदा आदि शून्य हृदय इप्सिता संगलब्धा, जिन्होंने निंदा से मुक्त हैं, तो वो उत्तम अधिकारी है। लेकिन केवल ये तो बाह्य आभास है, लेकिन अंदर भी कुछ गुण होता है, इस गुण को हम प्राकृत अवस्था में पहचान नहीं कर सकते। ये हार्ट लेबोरेटरी चाहिए, वो लेबोरेटरी हम टेस्ट कर सकते हैं, कौन भक्त हैं, कौन अभक्त है। एक सेंस में तो देखे तो सब भक्त हैं, कई माने कोई न माने, सबाई कृष्ण हरे दास, माया के दास भी कृष्ण के दास हैं, केवल भूल गए हैं और कोई याद रखा है, इतना अंतर है। इसलिए सबको सम्मान करना ये व्यवहार है, कि कोई भी बेस की में भी भक्त हैं, फिर भी इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये सीखना कि हम इतना तो निंदा ना करें, ये बहुत बड़ा प्रतिबंधक है जो पहचान करने में। किसके हम गुण देखें तो हम पहचान करेंगे, हाँ पता है। यही था अंतर युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में। दुर्योधन को दिखाई नहीं पड़ा, उनको भेजे द्रोणाचार्य, देखिए आओ कौन भक्त है, तो कोई नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की दृष्टि क्या थी, सत्य व धर्म पर था, उन्हें देखे सब धार्मिक है, ये विजन। पहले दृष्टि को बढ़ाना चाहिए, फिर सृष्टि को देखना चाहिए। ऐसा और कोई किसके प्रश्न है, प्लीज।
आत्मा, आत्मा का गुण धर्म चेतना है और मन का गुण धर्म भावना है, बरोबर? आत्मा का गुण धर्म चेतना है और मन का भावना है।
आत्मा और चेतना में आप क्या डिफरेंस समझते हैं?
नहीं, मतलब वो उसका गुण धर्म है आत्मा का,
गुण
गुण धर्म है उसका।
गुण क्या है और धर्म क्या है?
क्वालिटी।
और धर्म
नहीं, मैं हरे कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस।
गुण को हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं ना, धर्म को क्या कहते हैं, इंग्लिश में नेचर भी कहते हैं। एक शाब्दिक रूप में हम कहते हैं गुण धर्म, लेकिन गुण जो है वही धर्म है, स्वभाव है। जैसे हम कहते हैं जल की धर्म क्या है, लिक्विडनेस से। अग्नि के धर्म क्या है, ताप देना है, प्रकाश देना है। तो उसकी गुण भी वही है। तो आत्मा के जब आप पूछ रहे हैं गुण धर्म क्या है, नेचर क्या है, तो आत्मा क्या है, हा? क्या है आत्मा, क्या है आत्मा? ही चेतन है। अग्नि कहने का मतलब है कि प्रकाश है, वो डिफरेंस नहीं है। तो आत्मा कहने का मतलब है चेतना है, और चेतना के अलग अलग रिफ्लेक्शन है। हम इसको चित्त कहते हैं, कभी मन कहते हैं, कभी बुद्धि कहते हैं। नहीं, हम जिसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शसनेस, उसको हम लिखते हैं क्या, कृष्ण भावना अमृत। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, केवल रिफ्लेक्शन है। सेम इलेक्ट्रिसिटी जब बल्ब में जलता है उसकी पावर के अनुसार है। हेलोजिन में वही लाइट आता है, सेम फ्लो है करंट। जैसे अग्नि हम उच्चारण करते ही ये रखना चाहिए, उसके पास ताप है, प्रकाश है। तो भावना किसमें है, मन में है। इसको अलग अलग सांख्य दर्शन के अनुसार डिवाइड किया गया है, लेकिन भगवान जब उद्धव को इस ज्ञान देते हैं, जो सांख्य दर्शन, वो कहते कुछ कुछ कहते कि तीन है, सिर्फ तीन है, कोई कहता एक है, ये सब कुछ ठीक है। क्यों ना, उनके विचार और तर्क के अनुसार, क्योंकि आत्मा से ही सब कुछ विकार हुआ है। सर्वं खड़म इदं ब्रह्मा, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन कैसे हुआ विकार, गुण के प्रभाव से। फिर अहंकार आता है, और अहंकार फिर डिवाइड होता है थ्री। हाँ, तो फिर कपिल देव आगे व्याख्या करते हैं, तीन से तीन मिलता है नौ, फिर नाइन इंटू नाइन 81, फिर तीन गुण रहता है, तो फिर 84 लाख जो नहीं है। तो व्यक्त हुआ है इतनी बड़े जो संसार है, सिर्फ क्या है उसमें अंदर चेतना है। जयदम धारियते जगत, यही जगत को धारण किया। तो फिर हम व्याख्या करेंगे, तो तीन गुण अलग हैं, सत्तो रजतम। एसेंशियली एक ही है, लेकिन जब विकार हो जाता है, सब दूध से प्रोडक्ट होता है, घी भी वही है, दही है, लेकिन टाइम और सर्कमस्टेंस, मूल इंग्रेडिएंट है गाय से बना हुआ दूध। वो इसको हम राबड़ी बना सकते हैं, हाँ, कभी खोआ बनाते हैं, कभी दही बनाते हैं, लेकिन एक है। लेकिन वैरायटीज जब हो जाता है तो अलग अलग दिखाई पड़ता है। चित्रम गुणेर विचित्रा 326, हाँ, तीसरा स्कंद की 26 अध्याय में कहते कपिल देव, ये जगत को हम जो भी देखते हैं, हाँ, ये सब विचित्र रंगमय है, ये सब गुण है, गुणेर विचित्र। त्रिभी मई गुणेरे भी इदम सर्ग सर्वम मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यं परमपः। सिर्फ मैं ही हूं अकेला जो कि इस गुण को भी सृष्टि किया हूं और इतनी बड़े संसार को प्रकट किया। वो अंडरस्टैंडिंग है अद्वैत, अद्वैतवाद। समझ के ना, और कुछ है डाउट है? ठीक है, और किसके प्रश्न है? थोड़ा जोर से बोलिए, माइक्रोफोन दीजिए उनको।
नहीं तो पास माइक वाले. मध्यम अधिकारी होना जरूरी है. उसके बाद प्रचार सब कर सकते हैं. सेतु बांध बांधने के लिए हनुमान भी था, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लेके आया, लेकिन गिल्लारी भी बालू उठा के लेके जा रहा था. तो हनुमान कहा हटो, हाँ तुम क्या करे, बालू लेके क्या करके बांध बांधोगे इतने बड़े समुद्र के ऊपर. तो भगवान श्री राम ने बुलाए हनुमान, आप सब भक्ति के विषय में सब ज्ञान थे आपको, आपके पास ये विचार है. तो भगवान स्वयं गिलारी को अपने ऊपर उठा करके हाथ में रख करके उसके शरीर को ऐसा है सामने थे, उसके तीन अंगुली का निशाना हो गया. और कहे कि वो अपनी प्रयत्न कर रहा है अपने शक्ति से, छोटा काम से भगवान ऐसा नहीं पहचान करते ये छोटा है ये बड़ा है. एंडियोवर प्रचार सब कर सकते हैं, लेकिन यदि किसकी अधीन में रह करी करे तो सफलता मिलता है. Yes,
भगवान का लीला और भगवान कोई अंतर नहीं है. अगर हम देश याद करने के समय भगवान का लीला याद करेंगे भगवान को नाम पहुंचेंगे. कभी कभी ऐसा है कि भगवान का लीला में दूसरा कैरेक्टर रहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जगह और मदर किरण रावण अचानक उसका याद.
हिरण्यकशिपु व जगाई माधाई ये भगवान की पार्षद हैं, उनकी भी स्मरण करें कि ये भगवान ने उनको मारे तो हमारे अंदर भी कलमस चल जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि असुर हैं. इसलिए भागवत में दिए हैं सवेरे उठकर कि इन्हीं नाम को स्मरण करने से, केवल नाम को उच्चारण करने से, भगवान के नाम नहीं अनेक सारी जो भगवान के साथ सब लीला में हैं और कुछ नदियां हैं, इसको उच्चारण करने से भगवान कहते मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है. सातवां स्कंद में है ना, पवित्र तीर्थ इस नाम को. तो आपको यदि वो नाम भी उच्चारण हो गया है तो भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हैं. आप जानते ना अभिन्नत्वत नाम नामनी, तो कृष्ण कहने के मतलब है संपूर्ण है, जैसे राजा कहने के मतलब है मंत्री भी है. और जो भगवान के साथ जो लीला में भाग लेते हैं वो ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, ये समझना चाहिए. चाहे कंस को मारे हमको मारने के लिए नहीं आएंगे भगवान, और इसलिए भी हम नरसिंहदेव की प्रार्थना करते क्या, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम. और हिरण्यकशिपु को देखते हैं ना नरसिंहदेव के साथ, नहीं देखते. ये रूप को भी देखने से भी अकेला भी आप हिरण्यकशिपु को देखेंगे ना तो उससे भी आपका कलमश शुद्ध हो जाए. तो कहते थे हम तो नरसिंहदेव की पूजा कर रहे थे फिर ये असुर को क्यों गोद में लेके बैठे. हाँ बताइए, जब अभिन्नत्व है तो भगवान की पार्षद भी अभिन्न है. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री गौर निताय श्री श्री राधारास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल.